नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, माइंडफुल बर्थिंग, नर्स मिडवाइफ और माइंडफुलनेस, शिक्षिका नैन्सी बार्डाके की प्रसव तैयारी तथा आरंभिक पेरेंटिंग पर केंद्रित मार्गदर्शिका है। इसका आधार उनका माइंडफुलनेस बेस्ड चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंटिंग कार्यक्रम है, जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन से प्रेरित है। पुस्तक गर्भावस्था और प्रसव को पूरी तरह नियंत्रित करने योग्य परियोजना की तरह नहीं, बल्कि बदलते अनुभवों, तीव्र संवेदनाओं और अनिश्चित निर्णयों की प्रक्रिया के रूप में देखती है। नहीं त्वरी गरे कुरे को रेनिय तेरी रो और गोने करी कर दे दो त्या ऐ कौन तरे सातारी वो तरे अफ्रीका पारे ओ ईट से हाय जे ऑन कर दिस सेम रमिनी रोतो। इसका उद्देश्य किसी एक प्रकार के जन्म बिना दवा वाले प्रसव या निश्चित परिणाम का वादा करना नहीं है। इसके बजाय यह ध्यान शरीर जागरूकता, सजग गति और संवाद के अभ्यासों द्वारा माता पिता को भय, दर्द और अपेक्षाओं के साथ अधिक कुशलता से रहने की तैयारी देती है। बाडा के तंत्रिका विज्ञान, मन शरीर चिकित्सा, प्रसव शिक्षा और व्यावहारिक अभ्यासों को जोड़ती है। पुस्तक का दायरा जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नवजात देखभाल, संबंधों में बदलाव और उपस्थित करुणामय पेरेंटिंग के लिए भी इसी प्रशिक्षण को उपयोगी मानता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डर को हटाने के बजाय वर्तमान क्षण में पहचानना। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि प्रसव का डर केवल सूचना की कमी से पैदा नहीं होता। कई बार अधिक जानकारी, जोखिमों की सूची और आदर्श जन्म की छवियां भी चिंता बढ़ा सकती हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ यहाँ जानबूझकर वर्तमान क्षण में और बिना तुरंत निर्णय दिए ध्यान देना है। यह अभ्यास व्यक्ति को यह पहचानने में मदद करता है कि शरीर में तनाव कहाँ है, मन भविष्य की किन आशंकाओं में जा रहा है और कौन सी प्रतिक्रिया वास्तविक स्थिति के बजाय कल्पना से संचालित हो रही है। इस पहचान के बाद लक्ष्य भय को जबरन समाप्त करना नहीं, बल्कि उसके रहते हुए भी अधिक स्थिर और विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देना है। बाडा के गर्भवती व्यक्ति और साथी दोनों को सांस, संवेदना और विचारों पर ध्यान लौटाने का प्रशिक्षण देती है। प्रसव के दौरान यह दृष्टि विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि अनुभव लगातार बदलता है और पूरा श्रम एक साथ सोचने पर असहनीय लग सकता है। वर्तमान संकुचन, वर्तमान सांस और उसके बाद आने वाले विश्राम पर ध्यान देना अनुभव को छोटे, संभालने योग्य हिस्सों में रखता है। यह भावनात्मक तैयारी चिकित्सा सलाह या जोखिम आकलन का विकल्प नहीं है। इसका काम यह है कि आवश्यक जानकारी और अप्रत्याशित परिस्थितियों के बीच व्यक्ति घबराहट के बजाय अधिक जागरूक भागीदारी कर सके। दूसरा, दर्द के साथ काम करने की सजग रणनीति। माइंडफुल बर्थिंग प्रसव वेदना को नकारने या उसे केवल सकारात्मक सोच से मिटाने का दावा नहीं करती। पुस्तक दर्द और उसके ऊपर बनती मानसिक पीड़ा के बीच उपयोगी अंतर रखती है। शारीरिक संवेदना के साथ डर, प्रतिरोध, भविष्यवाणी और नियंत्रण खोने की भावना जुड़ने पर अनुभव अधिक भारी हो सकता है। माइंडफुलनेस अभ्यास व्यक्ति को संवेदना की तीव्रता, स्थान, बदलाव और अवधि को अपेक्षाकृत खुली जिज्ञासा से देखने के लिए आमंत्रित करता है। इससे दर्द सुखद नहीं बन जाता, पर उसके प्रति स्वचालित कसाव और घबराहट को पहचानने की गुंजाइश बनती है। बाडाके के दृष्टिकोण में संकुचन स्थायी नहीं होते, वे आते हैं, बदलते हैं और उनके बीच विराम होता है। इसलिए ध्यान को पूरे प्रसव की कल्पना पर टिकाने के बजाय एक समय में एक लहर जैसी अनुभूति, सांस और विश्राम के क्षण पर लाना सिखाया जाता है। सजग चलना, हल्की गति, ध्यान और शरीर में तनाव को ढीला करने जैसे अभ्यास इस तैयारी का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ढांचा एपिड्यूरल, अन्य दर्द निवारक उपायों या चिकित्सकीय हस्तक्षेप के विरुद्ध सिद्धांत नहीं बनाता। इसका उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों के बीच सजग निर्णय और किसी भी चुने हुए मार्ग में बेहतर मुकाबला करने की क्षमता विकसित करना है। तीसरा, कठोर बर्थ प्लान के स्थान पर लचीली जन्म प्राथमिकताएं। पुस्तक प्रसव की अनिश्चितता को गंभीरता से लेती है, इसलिए यह ऐसे बर्थ प्लान की सीमा दिखाती है जो जन्म को पहले से तय घटनाक्रम मानते हैं। प्रसव की गति, दर्द निवारण की जरूरत, चिकित्सकीय सलाह और हस्तक्षेपों की संभावना पहले से पूरी तरह निश्चित नहीं की जा सकती। जब योजना को सफलता और बदलाव को विफलता समझ लिया जाता है, तब जरूरी परिवर्तन भी निराशा, अपराध बोध या नियंत्रण खोने की भावना पैदा कर सकते हैं। बाडाके का विकल्प निष्क्रिय स्वीकार्यता नहीं है, वह जानकारी लेने, प्रश्न पूछने, पसंद स्पष्ट करने और देखभाल टीम के साथ संवाद करने को महत्वपूर्ण मानती है। अंतर यह है कि व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को परिणाम की गारंटी नहीं, बल्कि निर्णय लेने की दिशा के रूप में रखता है। माइंडफुलनेस इस लचीलेपन को मानसिक आधार देती है। व्यक्ति देख सकता है कि उसकी उम्मीदें क्या हैं, कौन सी चिंता उनके पीछे है और स्थिति बदलने पर कौन सा अगला कदम वास्तव में आवश्यक है। यह दृष्टि नियोजित या अनियोजित हस्तक्षेप लंबे श्रम या अपेक्षा से अलग जन्म अनुभव में विशेष रूप से प्रासंगिक है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि तैयारी का श्रेष्ठ रूप हर परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं बल्कि परिस्थितियों के बदलने पर स्पष्टता, सहयोग और आत्मकरुणा बनाए रखने की क्षमता है। चौथा, जन्म साथी को सक्रिय सजग सहयोगी बनाना। माइंडफुल बर्थिंग में गर्भवती व्यक्ति को अकेला अभ्यासकर्ता नहीं माना गया है। पुस्तक जन्म साथी को भी ध्यान, शरीर जागरूकता और संवाद की प्रक्रियाओं में शामिल करती है। इसका कारण व्यावहारिक है। प्रसव के समय साथी की उपस्थिति तभी अधिक सहायक होती है जब वह स्वयं भी तनाव, असहायता या समस्या को तुरंत ठीक कर देने की बेचैनी से कुछ हद तक परिचित हो। सजग प्रशिक्षण साथी को अपनी प्रतिक्रिया पहचानने, शांत उपस्थिति बनाए रखने और जरूरत के अनुसार समर्थन देने में मदद कर सकता है। यह समर्थन केवल निर्देश देने या तकनीक याद दिलाने तक सीमित नहीं है। इसमें साथ सांस लेना, आरामदायक वातावरण बनाने में मदद करना, स्पर्श या मौन की जरूरत पूछना और चिकित्सा कर्मियों के साथ सम्मानजनक संवाद में भाग लेना शामिल हो सकता है। पुस्तक जोड़ों के बीच गर्भावस्था के दौरान बदलती अपेक्षाओं, डर और जिम्मेदारियों पर बातचीत की जरूरत भी रेखांकित करती है। इस तरह माइंडफुलनेस व्यक्तिगत तनाव प्रबंधन से आगे संबंध पर कौशल बनती है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिवार में एक ही व्यक्ति को जन्म साथी होना चाहिए या हर सहायक भूमिका समान होगी। उपयोगी सिद्धांत है स्पष्ट संवाद, सहमति और परिस्थिति के अनुरूप समर्थन। जन्म को साझा अनुभव मानने से माता पिता दोनों संक्रमण के लिए अधिक यथार्थवादी रूप से तैयार हो सकते हैं। अंत में प्रसव से आगे नवजात काल और सजग पेरेंटिंग का विस्तार। बाडाके की पद्धति की विशिष्टता यह है कि वह प्रसव को अंतिम लक्ष्य नहीं मानती। जन्म के बाद का समय नींद की कमी, शारीरिक पुनर्प्राप्ति, नई जिम्मेदारियों और संबंधों में बदलाव से भरा हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में सीखे गए अभ्यास नवजात काल में भी उपयोगी रहते हैं। सजगता माता पिता को यह देखने में सहायता कर सकती है कि थकान, चिड़चिड़ापन, चिंता या स्वयं के प्रति कठोर अपेक्षाएं कब बढ़ रही हैं। ऐसी पहचान के बाद छोटा विराम लेना, शरीर की जरूरत पर ध्यान देना, सहायता मांगना या साथी के साथ स्पष्ट बात करना अधिक संभव होता है। पुस्तक करुणा को भी महज भावुक विचार नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण की तरह रखती है। नए माता पिता हर क्षण शांत, सक्षम या प्रसन्न नहीं रह सकते। इस वास्तविकता को स्वीकारना दोषारोपण कम कर सकता है। बच्चे के साथ उपस्थित रहने का अर्थ हर समय पूर्ण ध्यान देना नहीं बल्कि उसकी जरूरतों और अपनी सीमाओं को यथासंभव स्पष्टता से देखना है। यह दृष्टि बच्चे को नियंत्रित करने की तकनीक नहीं देती, न ही कठिन मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए पेशेवर उपचार का स्थान लेती है। इसकी भूमिका रोजमर्रा के दबाव में प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच थोड़ा स्थान बनाना है। इसी कारण पुस्तक प्रसव शिक्षा को लंबे समय तक काम आने वाले भावनात्मक कौशल से जोड़ती है। निष्कर्ष में, माइंडफुल बर्थिंग उन गर्भवती लोगों और उनके साथियों के लिए उपयोगी है जो प्रसव की तैयारी में केवल चरणों, उपकरणों और संभावित प्रक्रियाओं की जानकारी से आगे जाना चाहते हैं। यह विशेष रूप से उन पाठकों के लिए प्रासंगिक हो सकती है जिन्हें जन्म को लेकर भय, अनिश्चितता या नियंत्रण खोने की चिंता है और जो नियमित अभ्यास के लिए समय निकाल सकते हैं। मिडवाइफ, डूला, प्रसव शिक्षक तथा अन्य पेरिनेटल पेशेवर भी इसके संवाद, दर्द मुकाबला और साथी सहयोग संबंधी विचारों से उपयोगी ढांचे पा सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह प्रसव को एक ही आदर्श परिणाम से नहीं आंकती। दवा रहित जन्म, एपिड्यूरल, चिकित्सकीय हस्तक्षेप या योजना में बदलाव, किसी भी परिस्थिति में ध्यान को वर्तमान अनुभव, उपलब्ध विकल्प और करुणापूर्ण प्रतिक्रिया पर लौटाया जा सकता है। इसी कारण इसका संदेश कई अन्य प्रसव पुस्तकों से अलग दिखाई देता है जो अक्सर किसी विशिष्ट तकनीक, जन्म स्थान या परिणाम को प्राथमिकता देती हैं। बाडा के ध्यान अभ्यास को शरीर की संवेदनाओं, आधुनिक प्रसूति परिस्थितियों और दंपति के रिश्ते से जोड़ती हैं। साथ ही वह इसे जन्म के बाद समाप्त नहीं करती बल्कि नवजात काल और पेरेंटिंग में तनाव तथा संबंधों के लिए भी लागू करती हैं। पाठक को इसे चिकित्सा सलाह के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि देखभाल टीम के साथ सूचित निर्णय लेने और कठिन अनुभवों में मानसिक लचीलापन विकसित करने वाले पूरक संसाधन के रूप में पढ़ना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मांग भी यही है, नियमित और ईमानदार अभ्यास, न कि किसी निश्चित जन्म अनुभव की गारंटी। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं नैन्सी बाडाक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।